छठा अध्याय, कंबोडिया के क्षेत्र में भारतीय उपनिवेशों की स्थापना। पहला, हुनान का राज्य। दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी एशिया के बर्मा, मलाएशिया, सियाम और इंडोनेशिया के देशों में भारतीयों ने जो उपनिवेश प्राचीन समय में स्थापित किए थे और जिनमें 1000 से भी अधिक वर्षों तक भारतीय संस्कृति फलती फूलती रही, उनका इतिवृत्त हमने पिछले अध्यायों में दिया है। इसी प्रकार के उपनिवेश उस क्षेत्र में भी भारतीयों द्वारा स्थापित किए गए थे जिसे 20वीं सदी के द्वितीय महायुद्ध तक इंडो चाइना हिंद चीन कहा जाता था और जहां वर्तमान समय में कंबोडिया, लाओस, दक्षिणी वियतनाम और उत्तरी वियतनाम के राज्य हैं। इंडोनेशिया के क्षेत्र में केवल जावा ही एक ऐसा द्वीप है जहाँ प्राचीन भारतीय राजाओं के बहुत से उत्कीर्ण लेख उपलब्ध हैं और साथ ही अनेक ऐसे विहार, चैत्य तथा मंदिर आदि भी विद्यमान है जिनसे वहाँ भारतीय संस्कृति के अस्तित्व का एक स्पष्ट चित्र हमारे सामने आ जाता है। सुमात्रा, बोर्नियो, मलाया आदि में भी भारतीयों ने बहुत से विहारों आदि का निर्माण कराया था और वहाँ के भारतीय राजाओं ने अनेक अभिलेख भी वहाँ उत्कीर्ण कराए थे। इनमें से कुछ इस समय प्राप्त भी हैं, पर वहाँ के विहार तथा मंदिर अब प्रायः खंडहरों के रूप में ही हैं, जिनके कारण इन प्रदेशों के भारतीय राज्यों के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकी है। पर इंडो चाइना का क्षेत्र कंबोडिया और वियतनाम प्राचीन भारतीय अवशेषों की दृष्टि से समृद्ध है। वहाँ के भारतीय राजाओं के बहुत से शिलालेख भी उपलब्ध हुए हैं और प्राचीन काल के अनेक मंदिर तथा विहार भी वहाँ पर्याप्त रूप से सुरक्षित दशा में विद्यमान है। अतः पुरातत्व विषयक सामग्री के आधार पर भी इस क्षेत्र के भारतीय राज्यों के संबंध में समुचित परिचय प्राप्त किया जा सकता है। इन राज्यों की स्थिति चीन के पड़ोस में भी थी और अनेक प्रतापी चीनी सम्राट इनसे अपना प्रभुत्व स्वीकृत कराने में भी समर्थ हुए थे। अतः चीन के प्राचीन इतिहास संबंधी ग्रंथों में भी इन राज्यों के विषय में अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं पाई जाती हैं। हुनान राज्य की स्थापना। कंबोडिया के क्षेत्र में भारतीय ने जो अनेक उपनिवेश स्थापित किए थे, हुनान उनमें एक था। ईसा की 3री सदी के मध्य में कांग ताई नामक चीनी लेखक ने इस राज्य के संबंध में यह विवरण दिया कि शुरू में हुनान में एक स्त्री का राज था जिसका नाम लियु य था। होपू में एक पुरुष रहता था जिसे हुएन चेन कहते थे। वह ब्राह्मण पौराणिक हिंदू देवता का श्रद्धालु भक्त था और देवता उसकी भक्ति से प्रसन्न था। हुएन चेन ने एक स्वप्न देखा जिसमें देवता ने उसे एक दैव धनुष देकर यह आदेश दिया कि वह किसी व्यापारी जहाज पर सवार होकर समुद्र यात्रा के लिए प्रस्थान कर दे। प्रातःकाल जब वह मंदिर में पूजा के लिए गया तो वहां उसे एक धनुष पड़ा मिला। उसे लेकर वह एक व्यापारी जहाज पर सवार हो गया। देवता ने वायु का रुख इस प्रकार परिवर्तित कर दिया कि वह जहाज हुनान के समुद्र तट पर जा लगा। जब लियु य ने एक जहाज को अपने समुद्र तट पर देखा तो उसे लूटने के लिए वह एक नौका लेकर चल पड़ी। यह देखकर हुएन चेन ने दैवी धनुष से ऐसा बांध छोड़ा जो लियु य की नौका के आर पार हो गई। इससे रानी भयभीत हो गई और उसने हुएन चेन के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। अब वही फुनान का राजा बन गया। चीनी विवरण के अनुसार लियु य ने हुएन चेन से विवाह कर लिया था और फुनान पर उन दोनों का संयुक्त शासन स्थापित हो गया था। यह तो स्पष्ट है कि हुएन चेन पौराणिक हिंदू धर्म का अनुयायी था और भारत से उसका संबंध था, पर चीनी विवरणों में जिसे होपू कहा गया है वह भारत में कहीं था या मलाया सदृश उस प्रदेशों में कहीं उसकी स्थिति थी जहां भारतीय लोग पहले ही अपनी बस्तियां बसा चुके थे, यह स्पष्ट नहीं है। होपू किस भारतीय शब्द का रूपांतर है यह भी पहचाना नहीं जा सकता, पर हुएन चेन को कौंडिन्य का चीनी रूपांतर माना गया है और प्रायः सभी विद्वान इसे स्वीकार करते हैं। चीनी विवरणों के अनुसार फुनान के निवासी अर्ध जंगली दशा में थे। वे नंगे रहा करते थे और अपने शरीरों को नानावेद चित्र गुदवाकर विभूषित किया करते थे। यह भरोसे के साथ कहा जा सकता है कि कौंडिन्य हुएन चेन द्वारा फुनान में सभ्यता का प्रवेश हुआ। संभवतः वह पहला व्यक्ति था जो बहुत से भारतीय उपनिवेशकों के साथ फुनान गया था और जिसने वहां के पुराने असभ्य निवासियों को परास्त कर उस देश में अपनी बस्तियां बसा ली थी, क्योंकि भारतीय उपनिवेशकों के साथ स्त्रियां नहीं थी, अतः उन्होंने फुनान की स्त्रियों से विवाह संबंध स्थापित किए। फुनान के इस भारतीय उपनिवेश के निवासी जातीय दृष्टि से संकर थे, पर भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति को वहां की स्त्रियों ने अपना लिया था जिसके कारण वहां की जनता भारतीय रंग में रंग गई थी। हुएन चेन के विषय में अन्य कोई जानकारी चीनी विवरणों से प्राप्त नहीं होती, पर चीनी ग्रंथों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उसका काल ईस्वी सन की पहली सदी में था। फुनान राज्य की प्रगति। हुएनचेन के पुत्र के विषय में चीनी विवरणों में यह लिखा है कि उसके राज्य में 7 ऐसे नगर थे जिनका शासन स्थानीय व्यक्तियों के हाथों में था, पर जो फुनान के राजा की अधीनता स्वीकार करते थे वह स्वाभाविक था कि अवसर पाने पर ये शासक स्वतंत्र होने का प्रयत्न करें। पर हुएनचेन का एक वंशज हुएन पान हुआंग था जो इन स्थानीय शासकों को पूर्णतया अपना वशवर्ती बनाने में समर्थ हुआ। उसने इनके स्थान पर अपने पुत्रों और पौत्रों की नियुक्ति की और सारे राज्य पर सुव्यवस्थित रूप से शासन किया। हुएन पान हुआंग की मृत्यु 90 साल की आयु में हुई और उसके पश्चात उसका द्वितीय पुत्र पान पान फुनान का राजा बना। उसका सेनापति फान चेमान था जो अत्यंत योग्य तथा कुशल शासक था। पान पान के समय में वही राज का कर्ता धरता रहा और 3 साल के स्वल्प शासन के पश्चात जब पान पान का देहावसान हो गया तो जनता द्वारा फान चेमान के राजा के पद के लिए वरण किया गया। 200 ईस्वी के लगभग संभवतः कोई ऐसा राजकुमार नहीं था जो अपने अधिकार से पान पान के बाद फुनान का राजा बन सकता। अतः भारतीय की पुरानी परंपरा के अनुसार जनता द्वारा वरण किए जाने पर फान चेमान ने राज सिंहासन प्राप्त किया और अपनी योग्यता तथा वीरता से इस नए राजा के फुनान के छोटे से राज को एक विशाल साम्राज्य के रूप में परिणत कर दिया। एक शक्तिशाली जलसेना को संगठित कर उसने समुद्र के मार्ग से विजय यात्रा प्रारंभ की और 10 राज्यों को जीत लिया और 1200 मील के लगभग तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। संभवतः सियाम और मलाया प्रायद्वीप उसके साम्राज्य के अंतर्गत थे और लाओस का कुछ प्रदेश उसके अधीन था। मलाया से आगे बढ़कर वह किन-किन स्वर्णद्वीप या स्वर्णभूमि पर भी आक्रमण की तैयारी कर रहा था, पर वह बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। अब वह रोग शैया पर था। उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र फान किनचिंग को सेनापति बनाकर विजय यात्रा को जारी रखने का प्रयत्न किया, पर उसके भांजे फान चन ने अपने मामा की बीमारी से लाभ उठाकर फान किनचिन का वध करा दिया और अपने को फुनान का राजा घोषित कर दिया। 225 ईस्वी में फान चन का शासनकाल इस दृष्टि से बड़े महत्व का है कि उस फुनान का चीन और भारत से राजनयिक संबंध स्थापित था और फान चान द्वारा इन दोनों देशों के राजाओं की सेवा में अपने राजदूत भेजे गए थे। फुनान की ओर से जो दूत मंडल 243 ईस्वी में चीन गया था वह अपने साथ अनेक बहुमूल्य उपहार भी ले गया था जिनमें कुछ गायक भी थे। चीनी विवरणों के अनुसार किंग सिंग ली नाम का एक भारतीय व्यापारी फान चन के समय में व्यापार के सिलसिले में फुनान गया था। उससे फान चन को भारत की अपार धन संपत्ति, रहन सहन, खान पान, व्यवहार और रीति रिवाज आदि के संबंध में बहुत सी नई बातें ज्ञात हुई। उसने यह भी बताया कि भारत फुनान से 6000 मील की दूरी पर है और वहां जाने आने में 3 या 4 साल लग जाएंगे। भारत के विषय में जानकारी प्राप्त कर फान चन ने अपने अन्यतम संबंधी सुबू को राजदूत बनाकर भारत भेजा। उसने तेऊ केऊ ली तक्कोला के बंदरगाह से जहाज द्वारा भारत के लिए प्रस्थान किया और लंबी समुद्र यात्रा के बाद वह एक बड़ी नदी गंगा के मुहाने पर पहुंच गया। वहां से नदी के साथ साथ ऊपर की ओर 1400 मील की यात्रा के अनंतर वह भारत के राजा की राजधानी में जा पहुंचा। भारत के राजा ने उसका उत्साहपूर्वक स्वागत किया और भारत भ्रमण की सब सुविधाएं उसे प्रदान कर दी। जब फुनान का राजदूत सुबू अपने देश को वापस लौटने लगा तो भारत के राजा ने अपने 2 दूत उसके साथ कर दिए और फुनान के राजा को उपहार के रूप में यूईसी देश के 4 घोड़े भी दिए। सुबू 4 साल बाद फुनान लौटा, पर इस बीच में वहां अनेक परिवर्तन हो चुके थे। फान चन की हत्या कर दी गई थी और फान चेमान के छोटे लड़के फान चांग ने राजगद्दी को अधिगत कर लिया था, पर फान चांग भी देर तक फुनान पर शासन नहीं कर सका। उसके सेनापति फान सियुन ने उसकी हत्या करा दी और स्वयं राजा का पद प्राप्त कर लिया। भारत के जिस राज की राजधानी में सुबू गया था चीनी ग्रंथों में उसके राजा को मेऊ लुएन कहा गया है। सिलवा लेवी ने उसे मुरुंड से मिलाया है। पुराणों और जैन साहित्य में मुरुंड शासकों का उल्लेख मिलता है जो संभवतः उन यूईसी शकों से संबंध थे जिन्होंने कि उत्तर पश्चिम की ओर से आकर भारत में अपना राज स्थापित किया था। भारत के राजा द्वारा यूईसी देश के 4 घोड़ों को फुनान के राजा की सेवा में भेजा जाना भी यही सूचित करता है कि भारत का यह राजा शक मुरुंड ही था। फान चंद द्वारा चीन और भारत के राजाओं की सेवा में भेजे गए दूतों के बदले में जो राजदूत उन देशों ने भेजे थे, वे जब फुनान पहुंचे तो वहां के राज सिंहासन पर फाऊ फान सियून विराजमान था। चीन के राजदूतों के नाम कांग ताई तथा चू इंग थे और भारत का एक राजदूत चेन शुंग था। फुनान के राजदरबार में चीनी राजदूतों की भारत के राजदूतों से भेंट हुई और उन्हें भारत के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिला। फुनान के राजदरबार में रहते हुए कांग ताई ने भारत और फुनान के विषय में जो जानकारी प्राप्त की थी उसे अब उसने एक पुस्तक के रूप में लेखबद्ध कर दिया था। कांग ताई की यह पुस्तक उतनी ही महत्व की थी जितने की मैगसनीज का भारत विवरण इंडिका था। खेद है कि मैगसनीज की इंडिका के समान कांग ताई की पुस्तक के भी कुछ अंश ही इस समय उपलब्ध हैं, जिन्हें की बात के लेखक ने अपने ग्रंथों में प्रयुक्त कर लिया था। फान सियून ने सुदीर्घ काल तक फुनान का शासन किया और अनेक दूतमंडल चीन भेजे। चीनी विवरणों में 268, 285, 286 और 287 ईस्वी में फान सियून द्वारा भेजे गए दूतमंडलों का उल्लेख विद्यमान है। फान सियून के उत्तराधिकारियों के विषय में चीनी विवरणों से कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। उनके अनुसार चाउ तन नामक राजा ने 357 ईस्वी में एक दूतमंडल चीन भेजा था और उसके साथ कुछ पालतू हाथी भी चीन सम्राट को उपहार के रूप में भेजे गए थे। चीनी विवरणों में चन तन को हिंदू लिखा गया है और यह कहा गया है कि उसने अपने को फुनान का राजा घोषित कर दिया था। इससे यह संकेत मिलता है कि फान सियून के बाद फुनान में अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी जिसका अंत चन तन द्वारा किया गया था। चन तन को चंदन या चंद्र के समान मिलाया गया है। चीनी विवरणों में फुनान के राजाओं के जो नाम दिए गए हैं उनमें फान या फन शब्द आता है। विद्वानों ने इसे वर्मा का चीनी रूपांतर प्रतिपादित किया है। कौंडिन्य द्वितीय। चीनी विवरणों के अनुसार 5वीं सदी के प्रारंभ में फुनान के राज सिंहासन पर कियाओ चेन कौंडिन्य का विराजमान था। वह भारत का रहने वाला ब्राह्मण था। एक दिन उसने फुनान जाकर वहां की राजगद्दी संभालने का दैवीय आदेश सुनाई दिया, जिसे सुनकर वह समुद्र मार्ग से पूर्व की ओर चल पड़ा और उसे और फुनान जा पहुंचा। वहां के लोगों ने उसका उत्साहपूर्वक स्वागत किया और उसे अपने देश का राजा वरण कर लिया। उस द्वारा फुनान में भारत के रीति रिवाज, चरित्र व्यवहार तथा कानून प्रचारित किए गए। ऐसा प्रतीत होता है कि 5वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय उपनिवेशकों का एक नया दल फुनान पहुंचा था, जिसके कारण वहां की भारतीय संस्कृति पहले से भी अधिक सुदृढ़ रूप में स्थापित हो गई थी। चीनी विवरणों में इस दूसरे भारतीय दल के नेता या नए उपनिवेशक को भी कौंडिन्य नाम दिया गया है। कौंडिन्य के पश्चात उसके जिन वंशजों ने फुनान में राज किया उनमें एक चो या पमो जयवर्मा था, जिसके विषय में चीनी विवरणों में अधिक विस्तार से लिखा गया है। कौंडिन्य कुल के इस राजा ने व्यापार के लिए कुछ व्यापारियों को कैंटन भेजा। जब वह वापस आ रहे थे तो नागसेन नाम का एक भारतीय भिक्षु भी उनके साथ हो लिया, पर समुद्र में तूफान आ जाने के कारण उसके जहाज को चंपा रुक जाना पड़ा। चंपा भी भारतीयों का एक उपनिवेश था जिसकी स्थिति वियतनाम के क्षेत्र में थी। चंपा के लोग ने जहाज के सब माल को लूट लिया क्योंकि इस समय वहां का शासन क्यू चेउ लो नाम का व्यक्ति के हाथों में था, जो वस्तुतः फुनान का निवासी था। अपने राजा के विरुद्ध विद्रोह कर वह चंपा चला गया था और एक षड्यंत्र द्वारा उसने वहां के राज सिंहासन को अधिगत कर लिया था। वह फुनान के राजा जयवर्मा के प्रति शत्रुता अनुभव करता था और संभवतः इसी कारण उसने वहां के व्यापारी जहाज को लुटवा दिया था। नागसेन से चंपा का वृत्तांत सुनकर जयवर्मा ने 484 ईस्वी में एक दूतमंडल चीन के सम्राट के पास भेजा। इसके साथ एक पत्र भी जयवर्मा द्वारा भेजा गया था जिसमें चीन के सम्राट से चंपा के विरुद्ध सहायता की प्रार्थना की गई थी। फुनान के दूतमंडल का नेता नागसेन को बनाया गया था जो पहले चीन रह चुका था। नागसेन ने चीन के सम्राट से भेंट करते हुए फुनान राज का विशद रूप से परिचय दिया और वह यह बताया कि वहां के निवासी माहेश्वर शिव की पूजा करते हैं। उसने सम्राट की सेवा में एक कविता भी प्रस्तुत की जो माहेश्वर बुद्ध द्वारा तथा सम्राट की प्रशंसा में लिखी गई थी। चीन के सम्राट ने चंपा के राजा की निंदा तो की पर उसके विरुद्ध सैन्य शक्ति का प्रयोग करना उचित नहीं समझा। बाद में भी अनेक दूतमंडल जयवर्मा द्वारा चीन भेजे गए। इसमें संदेह नहीं कि उस समय फुनान और चीन में घनिष्ठ संबंध की सत्ता थी। यद्यपि इस समय फुनान में प्रधानतया शैव धर्म का प्रचार था पर बौद्ध धर्म का भी वहां प्रवेश हो चुका था। चीनी विवरणों के अनुसार फुनान के दो बौद्ध भिक्षु जयवर्मा के समय में चीन गए थे और वहां रहकर उन्होंने बौद्ध ग्रंथों के अनुवाद के संबंध में महत्वपूर्ण कार्य किया था। इनमें एक भिक्षु संघपाल या संघवर्मा था जो 16 साल 506 से 522 ईस्वी चीन रहा था। वह अनेक भाषाओं का ज्ञाता था और सम्राट बू के आदेश पर उसने अनुवाद कार्य के लिए जिस संस्थान को स्थापित किया था उसे फुनान के नाम पर फुनान कुआन कहा गया जाता था। फुनान से जो दूसरा भिक्षु इस समय चीन गया था उसका नाम मंद्र या मंद्रसेन था। अनुवाद कार्य में वह भी संघपाल का सहयोगी था। जयवर्मा की पटरानी कुल प्रभावती थी जिसकी पुत्र गुणवर्मा था। जयवर्मा के बाद उसी को फुनान का राजा बनना चाहिए था पर जयवर्मा की एक रखेल से एक अन्य पुत्र भी था जो आयु से गुणवर्मा में से बड़ा था। उसका नाम रुद्रवर्मा था। 514 ईस्वी में जयवर्मा की मृत्यु हो जाने पर रुद्रवर्मा ने अपने छोटे भाई गुणवर्मा का वध कर राज सिंहासन पर स्वयं अधिकार कर लिया। दक्षिणी कंबोडिया के त्रेअंग प्रांत में एक संस्कृत का एक अभिलेख मिला है जिसमें जयवर्मा की रानी कुल प्रभावती द्वारा एक आराम तड़ाग और आलय बनवाने का उल्लेख है। रुद्रवर्मा का भी एक संस्कृत अभिलेख प्राप्त हुआ है। इनसे फुनान के इन राजाओं की सत्ता में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। राजा रुद्रवर्मा ने भी अनेक दूतमंडल चीन भेजे थे जो 517, 519, 520, 530, 535 और 539 ईस्वी में चीन गए थे। 517 में भेजे गए दूतमंडल का नेता तंग पाओ लाओ धर्मपाल नामक एक भारतीय था। 519 में गए दूतमंडल के साथ चंदन की बनी एक बुद्ध मूर्ति तथा बहुत से मणि माणिक के उपहार रूप में भेजे गए थे। रुद्रवर्मा के जिन बाद राजाओं ने फुनान में राज्य किया उनके नामों का उल्लेख चीनी ग्रंथों में नहीं मिलता। संभवतः फुनान के इतिहास में यह अव्यवस्था और अशांति का काल था जिसके कारण कोई दूतमंडल फुनान से चीन नहीं गया। चीनी वृत्तांतों से यह अवश्य सूचित होता है कि चेनला के राजा चित्रसेन ने फुनान पर आक्रमण कर उसे जीत लिया था। चित्रसेन का पुत्र ईश्वरसेन था जिसने 616, 619 में अपना दूतमंडल चीन भेजा था। अतः चित्रसेन का समय 6वीं सदी के अंतिम भाग में होना चाहिए। चेनला कंबुज का चीनी नाम था। फुनान के समय कंबुज भी एक भारतीय उपनिवेश था जिसके राजाओं की स्थिति फुनान के सामंतों के सदृश थी। ऐसा प्रतीत होता है कि रुद्रवर्मा के बाद के अव्यवस्था के काल में चेनला कंबुज के फुनान की अधीनता से मुक्त हो गया था और उसके राजा चित्रसेन ने उस पर विजय भी प्राप्त कर ली थी। पर फुनान की पृथक रूप से सत्ता का अंतिम रूप से अंत 7वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ था। उस समय तक कंबुज राज की शक्ति बहुत बढ़ गई थी और उसके प्रतापी राजा अपने साम्राज्य के निर्माण के लिए प्रयत्न करने लग गए थे। दूसरा, फुनान में भारतीय संस्कृति। चीन के प्राचीन ग्रंथों में फुनान की सभ्यता और संस्कृति के संबंध में अनेक विवरण विद्यमान हैं। चीन राजवंश 464-65 से 419, चीन राजवंश 365 से 419 ईस्वी के इतिहास में फुनान के विषय में लिखा है कि यह राज्य चंपा से 600 मील पश्चिम में है। वहां बहुत से ऐसे नगर हैं जिनका निर्माण दुर्ग के रूप में किया गया है। प्रसादों तथा भवनों का भी वहां प्राचुर है। लोगों का रंग काला है और वे सुंदर नहीं है। वे नंगे पैर रहते हैं और वस्त्र भी नहीं पहनते। उनकी प्रकृति बहुत सरल होती है और चोरी या डकैती वहां बिल्कुल नहीं होती। खेती उनका प्रधान पेशा है। भोजन के लिए वे चांदी की थालियों का प्रयोग में लाते थे। पुस्तकें वहां बड़ी संख्या में हैं और अनेक पुस्तकालय भी वहां विद्यमान हैं। लिखने के लिए वे जिस लिपि का प्रयोग करते हैं वह भारतीय लिपि पर आधारित है। बाद के एक चीनी इतिहास में यह लिखा गया है कि फुनान के लोग मकान बनाने के लिए लकड़ी का प्रयोग करते हैं और वहां के राजप्रसाद में अनेक मंजिलें हैं। उनकी नौकाएं 80 से 90 फीट तथा लंबी तथा 6 से 7 फीट चौड़ी होती हैं। नौकाओं का अगला भाग मछली के सिर की आकृति का और पिछला भाग मछली की पूंछ के ढंग का बनाया जाता है। जब राजा कहीं बाहर जाता है तो हाथी पर सवारी करता है। जेल खाने फुनान में नहीं होते। अपराध के निर्णय के लिए देवी परीक्षा का उपाय प्रयुक्त किया गया आता है। अभियुक्त यदि वस्तुतः अपराधी हो तो वह पानी में डूब जाएगा। यदि वह निरपराध हो तो पानी में नहीं डूबेगा। ईख अनार और संतरे फुनान में बहुतायत से होते हैं। वहाँ के लोग अच्छे स्वभाव के हैं और वे युद्ध को पसंद नहीं करते। लियांग वंश 502 से 556 के इतिहास में फुनान के लोगों के विषय में लिखा गया है कि वे देवताओं की कांस्य की मूर्तियाँ बनाते हैं। कुछ मूर्तियों के 2 सिर और 4 हाथ होते हैं और कुछ के 4 सिर और 8 हाथ। मरने पर शोक मनाने के लिए वे बाल और दाढ़ी मूछ मुंडवा देते हैं। शवों का अंत्येष्टि संस्कार 4 प्रकार से किया जाता है, चलाकर, नदी में बहाकर, गाड़कर या गिद्धों के लिए खुला छोड़कर। चीन के प्राचीन ग्रंथों से फुआन नान के जीवन का जो चित्र हमारे सम्मुख उपस्थित होता है वह प्रायः उसी ढंग का है जैसा कि प्राचीन भारत में था। चतुर्भुजी तथा अष्टभुजी मूर्तियों की पूजा, दैवी परीक्षाओं द्वारा अपराध का निर्णय करना, भारतीय लिपि में पुस्तकों का लिखा जाना आदि ऐसी बातें हैं जो फुनान पर भारतीय संस्कृति के प्रभाव का संकेत करती हैं। फुनान में 3 संस्कृति का अभिलेख भी उपलब्ध हुए हैं जिनसे वहाँ भारतीय भाषा, धर्म तथा संस्कृति के प्रचार में कोई भी संदेह नहीं रह जाता। एक अभिलेख में राजकुमार गुण वर्मा द्वारा चक्र तीर्थ स्वामी विष्णु के मंदिर को दिए गए दान का उल्लेख है। अनेक पुराणों में चक्र तीर्थ शब्द विद्यमान है और चक्र तीर्थ स्वामी विष्णु का ही एक नाम है। इस अभिलेख का एक श्लोक यह है, तद भक्तो दिवसेत विषेदपि चवा तुष्टांतरात्मा जनो मुक्तो दुष्कृत किमरणस्मन परम गच्छेत पदम वैष्णवम। विष्णु का जो भक्त उसके मंदिर में निवास करता है या उसमें प्रवेश भी कर लेता है उसकी अंतरात्मा संतुष्ट हो जाती है, दुष्कर्मों से वह मुक्त हो जाता है और परम वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। विष्णु के प्रति भक्ति का इस श्लोक में कितना महत्व निरूपित किया गया है चीनी विवरणों से तो यही ज्ञात होता है कि फुनान में प्रधानतया शैव धर्म का प्रचार था और उसके साथ साथ बौद्ध धर्म की भी वहाँ सत्ता थी, पर वैष्णव धर्म भी वहाँ प्रचलित था। यह इस अभिलेख से स्पष्ट है। गुण वर्मा द्वारा विष्णु के जिस मंदिर को दिए गए दान का इस अभिलेख में उल्लेख किया गया है उसकी मूर्ति ऐसे ब्राह्मणों द्वारा प्रतिष्ठापित की गई थी जो वेदों, उपवेदों और वेदांग में पारंगत थे। फुनान के दूसरे संस्कृत अभिलेख में भी विष्णु की स्तुति की गई है। तीसरे संस्कृत अभिलेख में राजा जयवर्मा और उसके पुत्र रुद्र वर्मा का उल्लेख है और उनकी प्रशस्ति में ये श्लोक कहे गए हैं, एकस्तम अखिलान नराधिपगुणान उद्धच्चे वेचि तुम धात्रा निर्मित एक एव सभुविश्री रुद्र वर्मा सर्वसच्चरितम कृतम निपातना तेनाति धर्माथिना लोकानुग्रह साधनम प्रति न च छत्रवर्तम खंडितम। भगवान ने श्री रुद्र वर्मा को ऐसा बनाया था जिससे कि राजा के योग्य सब गुण उसमें एक स्थान पर एकत्र हो गए थे। धर्म के साधन की अभिलाषा से उसने सब सत्कृत्य किए थे, पर साथ ही उसने क्षत्रिय के उन कर्तव्यों का भी परित्याग नहीं कर दिया था जिन द्वारा जनता का हित कल्याण होता है। रुद्र वर्मा की प्रशस्ति में कहे गए ये श्लोक ठीक भारतीय शैली में है। इसी अभिलेख में यह भी कहा गया है कि राजा जयवर्मा ने एक ब्राह्मण द्विज नायक के पुत्र को अपने राज्य में धनानम अध्यक्ष कोषाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया था। संस्कृत के एक अभिलेख में जयवर्मा की रानी कुल प्रभावती के संबंध में यह लिखा है कि शुक के लिए शची का, अग्नि के लिए स्वाहा का, हर के लिए रुद्रानी का और श्रीपति के लिए श्री का जो स्थान है वही जयवर्मा के लिए कुल प्रभावती का था। ये अभिलेख यह प्रतिपादित करने के लिए पर्याप्त है कि फुनान में संस्कृत भाषा और पौराणिक हिंदू धर्म के साथ साथ पौराणिक अनुस्मृति तथा प्राचीन भारतीय मान्यताओं की भी सत्ता थी और दक्षिण पूर्वी एशिया के इस देश का सांस्कृतिक जीवन प्रायः उसी प्रकार का था जैसा कि इस काल में भारत में था। पर इस प्रसंग में यह ध्यान रखना चाहिए कि फुनान के सब निवासी भारतीय ही नहीं थे, वहाँ ऐसे लोग भी अच्छी बड़ी संख्या में निवास करते थे जो पहले जंगली या अर्ध सभ्य दशा में थे और भारतीय उपनिवेशकों के संपर्क में आकर जिन्होंने सभ्यता के मार्ग पर अग्रसर होना प्रारंभ किया था। इनके पुराने संस्कार, मान्यताएं व रीति रिवाज पूरी तरह से नष्ट नहीं हुए थे। भारतीय उपनिवेशकों 2 बार फुनान गए, पहली सदी में और फिर 5वीं सदी के प्रारंभ में। उपनिवेशकों के दोनों दलों के नेताओं को चीनी ग्रंथों में कौंडिन्य नाम से कहा गया है। दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य देशों में भी भारतीय उपनिवेशकों द्वारा जो राज स्थापित किए गए उनके राजकुल का संबंध भी कौंडिन्य या कुंडक के साथ जोड़ा गया है। संभवतः कौंडिन्य से भारत के किसी विशिष्ट कुल का बोध होता है जिससे के साहसी और प्रतापी व्यक्तियों द्वारा दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्र में भारतीय उपनिवेशों की स्थापना की प्रक्रिया का प्रारंभ किया गया था। तीसरा काम्बुज राज्य की स्थापना और संस्कृति। स्थापना। वर्तमान समय के कंबोडिया के क्षेत्र में फुनान के उत्तर में काम्बुज राज्य की स्थिति थी, जो पहले फुनान के अधीन था। सातवीं सदी में यह राज्य न केवल फुनान के अधीनता से मुक्त हो गया, अपितु इसके प्रतापी राजाओं ने फुनान को भी जीत लिया। सातवीं सदी में काम्बुज का जो उत्कर्ष प्रारंभ हुआ था वह प्रायः 700 साल तक कायम रहा। इस राज्य की स्थापना के विषय में यह कथा है कि प्राचीन काल में कंबु स्वायंभव नाम का राजा आर्य देश पर शासन करता था। वह शिव का उपासक था और मेरा नामक अप्सरा से उसका विवाह हुआ था। मेरा की मृत्यु हो जाने पर उसे वैराग्य हो गया और आर्य देश से प्रवास कर वह एक ऐसे देश में चला गया था जो बियाबान और उजाड़ था। वह चाहता था कि वहां अपने प्राणों का त्याग कर दे। इस उजाड़ प्रदेश से उसे एक गुफा मिली जो ऐसे बड़े बड़े और भयंकर सर्पों से परिपूर्ण थी जिनके कई कई सिर थे। इन्हें देखकर कंबु ने अपनी तलवार निकाल ली और सांपों को मारने के लिए ज्यों ही वह आगे बढ़ा, सर्पराज ने मनुष्य की वाणी में उसका नाम धाम पूछा। कंबु का परिचय प्राप्त कर सर्पराज ने कहा, मैं तुम्हें तो नहीं जानता पर तुम शिव के भक्त हो और शिव मेरे राजा हैं। अब तुम शोक का परित्याग कर इसी देश में हमारे साथ निवास करो। सर्पराज की यह बात कंबु ने स्वीकार कर ली और वह वहीं रहने लग गया। सर्पनाग ने जब चाहे मनुष्यों का रूप धारण कर लेते थे। वस्तुतः वे नाग जाति के मनुष्य थे। कुछ वर्ष पश्चात कंबु ने नागराज की कन्या से साथ विवाह कर लिया। नागराज को मंत्र सिद्ध था। उसने अपनी मंत्र शक्ति से उस उजाड़ प्रदेश को एक हरे भरे सुंदर देश के रूप में परिवर्तित कर दिया। अब कंबु वहां का राजा बन गया और उसी के नाम से वह देश काम्बुज कहने लगा। एक अन्य प्राचीन कथा के अनुसार इंद्रप्रस्थ का राजा आदित्य वंश अपने पुत्र से रुष्ट हो गया और उसने उसे राज्य से निर्वासित कर दिया। इंद्रप्रस्थ से निर्वासित होकर वह कोकलोक नामक राज्य में चला गया। वहां के राजा को परास्त कर उस देश का स्वामी बन गया। एक बार की बात है कि समुद्र तट पर घूमते हुए उसे वहीं रात बितानी पड़ गई। रात के समय वहां उसे एक अत्यंत सुंदर नाग कन्या दिखाई दी जिसके रूप पर वह मंत्रमुग्ध हो गया। उसने उसके साथ विवाह करने का निश्चय किया, जिसे जानकर नागराज ने समुद्र के जल का पान कर अपने भावी दामाद के राज क्षेत्र को और अधिक विस्तृत कर दिया। यही प्रदेश आगे चलकर काम्बुज नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन दोनों कथाओं में यह बात एक समान है कि काम्बुज देश के मूल निवासी नाग लोग थे और भारत से गए हुए जिस व्यक्ति द्वारा वहां भारतीय उपनिवेश का सूत्रपात किया गया था उसने नागराज की कन्या के साथ विवाह कर लिया था। वह इस बात का संकेत है कि काम्बुज देश में आर्यों और नागों का सम्मिश्रण हो गया था और वहां के निवासियों में इन दोनों जातियों के तत्व विद्यमान थे। काम्बुज की स्वतंत्रता। पहले काम्बुज फुनान के अधीन था। यद्यपि वहां के अपने राजा थे पर वे फुनान के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। जिस राजा ने काम्बुज को फुनान के प्रभुत्व से मुक्त कर स्वतंत्र किया उसका नाम श्रुतवर्मा था। श्रुतवर्मा का पुत्र श्रेष्ठ वर्मा था जिसके नाम पर स्वतंत्र काम्बुज की राजधानी का नाम श्रेष्ठपुर रखा गया था। यह नगरी लाओस में बसक के समीप स्थित थी। प्राचीन काम्बुज राज की स्थिति वर्तमान कंबोडिया के उत्तर पूर्वी प्रदेश में थी और वर्तमान लाओस का भी कुछ प्रदेश उसके अंतर्गत था। श्रेष्ठपुर इसी प्रदेश में था। वत्फु पर्वत इसके पड़ोस में ही है। प्राचीन समय में उसे लिंग पर्वत कहा जाता था और उसकी चोटी पर भद्रेश्वर शिव का मंदिर विद्यमान था। कंबोडिया में संस्कृत के अनेक ऐसे अभिलेख मिले हैं जिनमें श्रुतवर्मा और श्रेष्ठ वर्मा का उल्लेख है। ताप्रोम में राजा जय वर्मा का एक अभिलेख उपलब्ध हुआ है जो 886 ईस्वी का है। इसमें श्रुतवर्मा को काम्बुज के राजवंश का मूल वसुधाधर वंश योनि कहा गया है और उसके पुत्र श्रेष्ठ वर्मा तथा काम्बुज की राजधानी श्रेष्ठपुर का भी उल्लेख है। बक्सेई चमकोन के अभिलेख 946 ईस्वी में यह कहा गया है कि श्रुतवर्मा ने काम्बुज को बंधन से मुक्त कर दिया था और वह वहां के राजवंश का मूल था। श्री काम्बु भूधर भृत श्रुतवर्मा मूला मौलादपास्त बलिबंध कृताभिमान। काम्बुज के राजाओं में श्रुतवर्मा और श्रेष्ठ वर्मा के बाद भव वर्मा का नाम आता है। इसमें संदेह नहीं कि भव वर्मा के साथ काम्बुज के राजाओं की एक नई वंशावली का प्रारंभ हुआ था। पर उसका श्रुत वर्मा और ज्येष्ठ वर्मा के से क्या संबंध था यह स्पष्ट नहीं है। संभवतः उसका कंबुज तथा पुनान दोनों राज्यों के राजवंशों के साथ संबंध था। जिन अनेक अभिलेखों में भव वर्मा का वृत्तांत विद्यमान है उनके आधार पर विद्वानों ने इस राजा के विषय में बहुत ऊहापोह किया है। यह तो सुनिश्चित है कि वह न तो श्रुत वर्मा का पुत्र था और न श्रेष्ठ वर्मा का, क्योंकि अभिलेखों में उसके पिता का नाम श्री वीर वर्मा दिया गया है। यह भी स्पष्ट है कि वीर वर्मा स्वयं राजा नहीं था, क्योंकि अभिलेखों में वीर वर्मा के साथ राजा शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। इस दशा में एक मत यह प्रतिपादित किया गया है कि भव वर्मा श्रेष्ठ वर्मा का दामाद था। ताप्रोक के अभिलेख के सातवें श्लोक में श्रेष्ठ वर्मा का उल्लेख है और नौवें श्लोक में भव वर्मा का। बीच के आठवें श्लोक में एक स्त्री का उल्लेख है जिसे कंबुज राजलक्ष्मी कहा गया है। यह स्त्री श्रेष्ठ वर्मा की पुत्री थी या उसके साथ उसका कोई अन्य संबंध था, अभिलेख से यह स्पष्ट नहीं होता। पर अभिलेख में इस स्त्री को श्रेष्ठ वर्मा के मातृकुल में उत्पन्न तदीय मता कुलाम्बुराशव कहा जाने यह सूचित करता है कि श्रेष्ठ वर्मा से उसका निकट संबंध था। संभवतः श्रेष्ठ वर्मा के पश्चात कंबुज के राजसिंहासन पर इस कंबुज राजलक्ष्मी का ही अधिकार था और इससे विवाह कर लेने के कारण ही श्री वीर वर्मा का पुत्र भव वर्मा वहां की राजगद्दी पर आसीन हो गया सका था। इसमें संदेह नहीं कि भव वर्मा उस वंश से उत्पन्न नहीं हुआ था जिसके कि श्रुत वर्मा और श्रेष्ठ वर्मा थे। ताप रोम के अभिलेख में श्रेष्ठ वर्मा को सूर्यवंशी कहा गया है और भव वर्मा को सोमचंद्रवंशी। बक्सेई चमकोन के अभिलेख से यह सूचित होता है कि बाद में इन दोनों वंशों का एकीकरण हो गया था। संभवतः कंबुज राजलक्ष्मी और भव वर्मा के विवाह द्वारा ही श्रेष्ठ वर्मा और भव वर्मा के वंशों का एकीकरण हुआ था। भद्र वर्मा के विषय में एक मत यह है कि भव वर्मा का संबंध पुनान के राजकुल के साथ था। पुनान के राजा रुद्र वर्मा का उल्लेख इसी अध्याय में ऊपर किया जा चुका है। कंबोडिया के एक अभिलेख अंग चुमनिक के अनुसार भव वर्मा रुद्र वर्मा के बाद राजा बना था। इस अभिलेख में वैद्यों के एक परिवार का उल्लेख है और वैद्यों के नाम के साथ साथ उन राजाओं के नाम भी दिए गए हैं जिनके कि ये राजवैद्य थे। ब्रह्मदत्त और ब्रह्म सिंह रुद्र वर्मा के वैद्य थे। उनका ये दोनों सगे भाई थे। बड़ा भांजा धर्मदेव वर्मा भव वर्मा का राजवैद्य रहा था और छोटा भांजा सिंहदेव महेंद्र वर्मा का। धर्मदेव का पुत्र सिंहवीर राजा ईशान वर्मा का मंत्री था और सिंहवीर का पुत्र सिंहदत्त जय वर्मा का राजवैद्य था। अंग चुमनिक के इस अभिलेख में पांच राजाओं के नाम दिए गए हैं जो एक दूसरे के बाद हुए थे। इन राजाओं का क्रम इस प्रकार है: रुद्र वर्मा, भव वर्मा, महेंद्र वर्मा, ईशान वर्मा और जय वर्मा। महेंद्र वर्मा आदि भव वर्मा के उत्तराधिकारी थे। यह अन्य अभिलेखों से भी स्पष्ट है, पर अंग चुमनिक के अभिलेख से यह संकेत मिलता है कि भव वर्मा रुद्र वर्मा के बाद हुआ था। हमें ज्ञात है कि रुद्र वर्मा में भी फुनान का राजा था और भव वर्मा के राज्य में भी फुनान सम्मिलित था। इन सब बातों को दृष्टि में रखकर यह मत प्रतिपादित किया गया है कि रुद्र वर्मा की मृत्यु के पश्चात फुनान में अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी जिसका कारण राजसिंहासन की प्राप्ति के लिए संघर्ष था। भव वर्मा का संबंध फुनान के राजवंश से था और अपने प्रतिद्वंद्वियों को परास्त कर वह ही रुद्र वर्मा का उत्तराधिकारी बना था। अभिलेखों में अनेक प्रकार से यह प्रकट किया गया है कि भव वर्मा ने अपनी शक्ति का उपयोग कर राजसिंहासन प्राप्त कर लिया था। स्वशक्तया कांत राज्यस्य राज्ञ श्री भव वर्मण, और उसे शत्रुओं का संग का मर्दन करना पड़ा था। शिव श्री भव वर्मण क्षिति पतेश्या कितया शिलाघिनव वीरियोदाम संपन्त संग समर है। वे पूर्णतया अनुमान पर आधारित है, उन्हें सुनिश्चित तथ्य नहीं कहा जा सकता, पर इसमें संदेह नहीं कि भव वर्मा के बाद जो राजा चिरकाल तक कंबुज का शासन करते रहे वे अपना मूल श्रुत वर्मा में मानते थे। इसीलिए दसवीं सदी और बाद के अभिलेखों में श्रुत वर्मा को ही कंबुज के राजवंश की योनी मूल कहा गया है। भव वर्मा श्रेष्ठ वर्मा के पश्चात भव वर्मा कंबुज देश का राजा बना। उसका काल छठी सदी के मध्य भाग में माना जाता है। अपनी राजधानी का नाम उसने अपने नाम से भवपुर रखा। वह एक महान विजेता और उस द्वारा कंबुज राज्य का बहुत विस्तार हुआ था। फुनान को जीतकर उसने अपने राज्य में सम्मिलित करने की प्रक्रिया का प्रारंभ उसी द्वारा किया गया था। यद्यपि यह कार्य उसके भाई चित्रसेन महेंद्र वर्मा द्वारा पूर्ण हुआ था, 6 ऐसे अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिनमें भव वर्मा का नाम आया है। इन्हें श्रेष्ठ वर्मा के उत्तराधिकारी इसी भव वर्मा का समझा जाता है। इन अभिलेखों में भव वर्मा या उसके किसी राजपदाधिकारी द्वारा किए गए दान पुण्य का उल्लेख है और प्रसंगवश उनमें राजा के वंश तथा वीर कृत्यों का भी संकेत कर दिया गया है। एक अभिलेख के अनुसार भव वर्मा ने शिव त्र्यंबक के लिंग की स्थापना कर शिव मंदिर के लिए ऐसा धन दान में दिया था जो उसने धनुष के बल पर प्राप्त किया था। सरासनोद्योग जीतार्थ दान है। एक अन्य अभिलेख में राजा भव वर्मा को सोम वंश का बताकर उसे शत्रु रूपी अंधकार को दूर करने वाला सूर्य कहा गया है। इसी प्रकार एक अभिलेख में उसे शत्रुओं की नारियों के मुख कमलों को अश्रुवाष्प से अपलावित कर देने वाला बताया गया है। अभिलेखों के ये श्लोक निम्नलिखित हैं। स राजा भव वम मृति भवत्यधिक शासन सोम वंशियो प्यारी ध्वांत प्रध्वशनम दिवाकर सोमना वयानो ससमो यह कालका किंत संपद रिपुनारी मुखान बजेशु कृतवास्व परि विप्लव। इसमें संदेह नहीं कि कंबुज देश के उत्कर्ष के लिए भव वर्मा का कर्तृत्व बहुत महत्व का था। फुनान की अधीनता से यह देश सुत वर्मा के समय में ही मुक्त हो गया था, पर भव वर्मा केवल कंबुज के राज में ही संतुष्ट नहीं रहा, उसने फुनान पर भी आक्रमण किया और उसे अपने अधीन कर लिया। चीनी ग्रंथों में फुनान की विजय का श्रेय चित्रसेन को दिया गया है जो भव वर्मा का भाई था और उसके भाई कंबुज का राजा बना था। संभवतः भव वर्मा फुनान के केवल उत्तरी प्रदेशों को ही अपनी अधीनता में ला सका था। उसके शेष कार्य को चित्रसेन ने संपन्न किया। चित्रसेन महेंद्र वर्मा, ऐसा प्रतीत होता है कि भव वर्मा के बाद उसका पुत्र कंबुज का राजा बना था। हंचे के एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है, पर या तो इस राजा की शीघ्र मृत्यु हो गई और या इसके चाचा चित्रसेन द्वारा इसकी हत्या करा दी गई। एक चीनी ग्रंथ में चित्रसेन के राज्याभिषेक के कुछ समय बाद ही इसकी रचना हुई थी। यह लिखा है कि जब कोई राजा राज सिंहासन पर आरूढ़ होता है तो उसके भाइयों की नाक और उंगलियां काट ली जाती है और उन्हें पृथक पृथक स्थानों पर कैद कर लिया जाता है। राज्य लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए भाई भतीजों के प्रति किए जाने वाले व्यवहार को दृष्टि में रखकर ही चीनी ग्रंथ में यह बात कही गई थी। चित्रसेन महेंद्र वर्मा के नाम से कंबुज के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ था। इस राजा के 2 अभिलेख उपलब्ध हुए हैं, उनमें से एक की 3 प्रतियां मिली हैं और दूसरे की 6। एक अभिलेख में इसने अपने को भव वर्मा का छोटा भाई कहते हुए शक्ति में उससे अन्यून कहा है। शक्ते आयार न्यून कनिष्ठ पी भ्राता श्री भव वर्मन। चीनी विवरणों के अनुसार फुनान की विजय इसी राजा द्वारा की गई थी। यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि फुनान की विजय का कार्य महेंद्र वर्मा द्वारा पूरा किया गया था। चंपा के एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि राजा ने अपने राजदूत चंपा के राजदरबार में भेजे थे। 7वीं सदी के प्रारंभ काल में कंबुज के दूत मंडल चीन भी गए थे, जिन्हें या तो महेंद्र वर्मा ने वहां भेजा था और या उसके उत्तराधिकारी ईशान वर्मा ने। महेंद्र वर्मा शैव धर्म का अनुयायी था। शिलाखंड पर उत्कीर्ण एक अभिलेख में उस द्वारा एक शिवलिंग की स्थापना का उल्लेख है। एक अन्य अभिलेख के पत्थर की बनी एक ऐसी मूर्ति का उल्लेख है जिसे महेंद्र वर्मा ने विविध देशों की विजय के पश्चात प्रतिष्ठापित कराया था। इसी राजा के शासनकाल के एक अभिलेख में शंभुपद शिव पद की स्थापना का वर्णन है। वहां लिखा है, ध्रुव पुण्य कीर्ति के पौत्र ध्रुव के पुत्र द्विजोत्तम विद्यावित ने इस शंभु पद के पुण्य कार्य को संपन्न किया। उसी ने पर्वत की उपत्यका में भगवान के अभिषेक के लिए सरोवर बनवाया। शकाब्द ५२६ में भगवान का यह पद ईंट की दीवारों से घेरा गया और 546 में सरोवर को जल से भरा गया। विष्णु पद तो भारत में मिलता है, पर शिव पद कंबुज देश में ही था। ईशान वर्मा महेंद्र वर्मा के पश्चात उसका पुत्र ईशान वर्मा कंबुज देश का स्वामी बना। उसके राजगद्दी पर आरूढ़ होने का काल 7वीं सदी के प्रारंभ में 617 ईस्वी के आसपास रखा जा सकता है। यद्यपि महेंद्र वर्मा फुनान की विजय को पूरा कर चुका था, पर अभी वह पूर्ण रूप से शांति स्थापित नहीं हुई थी। कंबुज के प्रभुत्व के विरुद्ध वहां संघर्ष चलता रहता था। संभवतः फुनान का परास्त कर राजा अपने देश के दक्षिणी कोने में स्थित किसी दुर्ग को केंद्र बनाकर कंबुज के प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष में तत्पर था। ईशान वर्मा ने 627 ईस्वी में उसे परास्त किया और फुनान पर अपना अबाधित शासन स्थापित कर लिया। उसका राज बहुत विस्तृत था। संपूर्ण कंबोडिया तो उसके अधीन था ही, पर पड़ोस के कतिपय अन्य राज्यों को भी वह अपने अधीनता में ले आया था। उसके उत्कीर्ण लेख मेकांग नदी के मुहाने के प्रदेश में और सियाम की पूर्वी सीमा के प्रदेश में भी मिले हैं, जिससे उसके राज के विस्तार का अनुमान किया जा सकता है। चीनी यात्री ह्वेन सांग के अनुसार ईशान वर्मा का राज पश्चिमी में द्वारवती, मध्य सियाम तथा पूर्व में पहा चंपा वियतनाम तक विस्तृत था। इस राजा ने भवपुर के स्थान पर ईशानपुर को अपनी राजधानी बनाया, जिसका नाम उसने अपने नाम पर रखा गया था। संबोर प्रई कुक नामक स्थान पर इसी नगरी की स्थिति थी। वहां ईशान वर्मा के अनेक अभिलेख भी उपलब्ध हुए हैं। चंपा के राज्य से ईशान वर्मा का घनिष्ठ संबंध था। उसकी पुत्री श्री शर्वानी का विवाह चंपा के राजा जगधर्म के साथ हुआ था। इस काल में चंपा के राजकुल में अव्यवस्था मची हुई थी, जिसका कारण राजप्रसाद तथा अंतःपुर के षड्यंत्र थे। श्री शर्वानी का पुत्र प्रकाश धर्मा जब चंपा से राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ तो उसने षड्यंत्रों का अंत कर शासन में सुव्यवस्था स्थापित की। ईशान वर्मा की एक अन्य कन्या भी थी, जिसका विवाह दक्षिण भारत के ब्राह्मण दुर्ग स्वामी के साथ हुआ था। उससे यह सूचित होता है कि इस काल में भारत के साथ भी कंबुज देश का संबंध विद्यमान था। चीन के सम्राट की सेवा में भी अनेक दूतमंडल ईशान वर्मा द्वारा भेजे गए थे। चीन के प्राचीन ग्रंथों में इनका उल्लेख किया गया है। ये दूतमंडल 616 और 617 ईस्वी में चीन भेजे गए थे। जय वर्मा प्रथम अंग चुमानिक के अभिलेख में ईशान वर्मा के बाद जय वर्मा का नाम दिया गया है, पर कंबोडिया के एक अन्य अभिलेख से सूचित होता है कि 639 ईस्वी में कंबुज में भव वर्मा का शासन था। इस अभिलेख में भव वर्मा द्वारा देवी चतुर्भुज की मूर्ति की प्रतिष्ठा तथा उसके लिए दी गई दान दक्षिणा का उल्लेख है। इससे सूचित होता है कि ईशान वर्मा और जय वर्मा के बीच में भव वर्मा नाम के एक अन्य राजा ने कंबुज देश का शासन किया था। शेष वर्मा के उत्तराधिकारी भव वर्मा से पृथक करने के लिए इसे भव वर्मा द्वितीय कहा जाता है, पर इस राजा के शासन की कोई महत्वपूर्ण घटना ज्ञात नहीं है। भव वर्मा द्वितीय के बाद जय वर्मा प्रथम कंबुज के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। उसका शासनकाल 657 से 674 ईस्वी तक था। उसके जो अनेक शिलालेख उपलब्ध हुए हैं उनके प्रति स्थानों को दृष्टि में रखकर यह माना जाता है कि उसके समय में कंबुज राज में ह्रास की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई थी और महेंद्र वर्मा द्वारा जिस सुविस्तृत राज की स्थापना की गई थी वह अक्षुण्ण रूप से विद्यमान था। जय वर्मा प्रथम के अभिलेख में उसे एक सुयोग्य तथा प्रतापी राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। चौथा, कंबुज इतिहास का अंधकार युग। स्थल कंबुज। जय वर्मा के पश्चात कंबुज के अपकर्ष का प्रारंभ हो गया था। चीनी ग्रंथों से ज्ञात होता है कि इस समय कंबुज दो राज्यों में विभक्त हो गया था, जिन्हें चीनी विवरणों में स्थल कंबुज और जल कंबुज कहा गया है। स्थल कंबुज में कंबोडिया के पर्वत प्रधान उत्तरी प्रदेश अंतर्गत थे और लाओस, तोनकिन तथा यूनान के भी कुछ भाग इसमें सम्मिलित थे। यह एक अच्छा शक्तिशाली राज्य था और चीन के साथ इसकी राजनयिक संबंध कायम था। 717 ईस्वी में इस द्वारा एक दूतमंडल चीन भेजा गया, पर चीन और स्थल कंबुज का मैत्री संबंध तब कायम नहीं रह पाया जबकि अनाम चंपा के उत्तर में के राजा ने चीन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और स्थल कंबुज की सेना ने उसकी सहायता की। कंबुज की सैनिक सहायता प्राप्त कर अनाम का राजा स्वतंत्रता प्राप्त करने में समर्थ हो गया था, पर इस समय अन्य प्रदेशों में भी चीन के प्रभुत्व के विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ हो गए थे। दक्षिणी चीन के यूनान प्रांत के जो प्रदेश चीनी सम्राट के अधीन थे उन्होंने भी विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया था। इस दशा में चीनी ने स्थल कंबुज के साथ मैत्री को पुनः स्थापित करने में ही अपना हित समझा और कंबुज की सहायता से चीन का सम्राट नान चाओ यूनान के विद्रोह को दबा सकने में समर्थ हो गया। 753 ईस्वी स्थल कंबुज का राजकुमार नान चाओ के विरुद्ध अभियान में अपने देश की सेना के साथ सम्मिलित था। 771 ईस्वी में स्थल कंबुज के राजा ने स्वयं चीन की यात्रा की, जिसके कारण इन दोनों देशों का मैत्री संबंध और अधिक दृढ़ हो गया। जल कंबुज, चीनी ग्रंथों में जिसे जल कंबुज कहा गया है उसके इतिहास के संबंध में कोई सूचना चीनी विवरणों से उपलब्ध नहीं हुई है, पर अभिलेखों से ज्ञात होता है कि वहाँ अनेक राज्य कायम हो गए थे। अभिलेखों में इस क्षेत्र के 3 राज्यों के नाम आए हैं, आनंदितपुर, शंभुपुर और व्यादपुर। शंभुपुर की स्थिति में कांग नदी के तट पर थी और उसे आजकल के संभोर के साथ मिलाया गया है, पर आनंदितपुर और व्यादपुर की स्थिति के संबंध में कोई संकेत नहीं मिली है। यह कह सकना भी कठिन है कि ये तीनों राज्य एक समय में साथ साथ विद्यमान थे या एक के बाद एक करके हुए थे। अधिक संभव यही है कि ये एक साथ समय में साथ साथ ही कायम थे, क्योंकि राजेंद्र वर्मा के प्रिय रूप और मऊवन के अभिलेखों में आनंदितपुर के राजा पुष्कराज द्वारा शंभुपुर के राज को प्राप्त करने का उल्लेख किया गया है। शंभुपुर की यह प्राप्ति संभवतः विवाह संबंध द्वारा की गई थी। यह प्रतीत होता है कि जल कंबुज दक्षिणी कंबोडिया अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था और उसकी राजनीतिक एकता कायम नहीं रह सकी थी। इस काल के अभिलेखों में इन राज्यों के कतिपय राजाओं के नाम भी विद्यमान हैं, पर उन द्वारा इन राज्यों के क्रमिक इतिहास को नहीं जाना जा सकता। 9वीं सदी में यशोवर्मा नाम का कंबुज देश का एक प्रतापी राजा हुआ था, जिसके संबंध में हम आगे चलकर लिखेंगे। उसके अनेक अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिनमें पूर्ववर्ती राज्यों के संबंध में भी कुछ परिचय दिया गया है। इनमें जिन राजाओं के नाम दिए गए हैं उनमें शंभुपुर के नृपति नंद वर्मा और पुष्कराज, आनंदितपुर के बालादित्य और शंभु वर्मा तथा नृपादित्य उल्लेखनीय हैं। अभिलेखों में इस काल के कुछ अन्य राजाओं के नाम भी विद्यमान हैं, पर वे कहाँ के राजा थे यह सूचित नहीं किया गया है। शैलेंद्र साम्राज्य और कंबुज देश, इसमें संदेह नहीं कि 8वीं सदी में कंबुज देश की राजनीतिक एकता कायम नहीं रही थी और वह अनेक राज्यों में विभक्त हो गया था। इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि उसकी राजशक्ति निर्मल पड़ गई और उसके लिए अपनी स्वतंत्र स्थिति को अक्षुण बनाए रखना संभव नहीं रहा। यही समय था जबकि श्री विजय के शैलेंद्र सम्राट साम्राज्य विस्तार के लिए तत्पर थे और उन्होंने जावा, मलाया प्रायद्वीप तथा वर्तमान इंडोनेशिया के बहुत से द्वीपों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। कंबुज की राजनीतिक परिस्थिति से शैलेंद्र ने लाभ उठाया और उसे भी अपना वशवर्ती बनाने में सफलता प्राप्त की। अरब व्यापारी सुलेमान ने 851 ईस्वी में जावक श्री विजय का शैलेंद्र साम्राज्य के राज का विस्तार का उल्लेख करते हुए लिखा था कि कंबुज के राजा को जावक की आक्रमण का तब तक पता नहीं चला जब तक वह नदी के मार्ग से उसकी राजधानी तक नहीं पहुंच गया। शैलेंद्र साम्राज्य के उत्थान का वृतांत लिखते हुए इस ग्रंथ में पहले श्री विजय द्वारा कंबुज के पराभूत किए जाने पर प्रकाश डाला जा चुका है। श्री विजय की अधीनता से कंबुज कब स्वतंत्र हुआ इस संबंध में अगले अध्याय में लिखा जाएगा। यहाँ इतना सूचित कर देना ही पर्याप्त है कि कंबुज की स्वतंत्रता का प्रधान श्रेय जय वर्मा द्वारा द्वितीय को प्राप्त है और जो 9वीं सदी के प्रारंभ काल में वहां के राज सिंहासन पर आरूढ़ था। पर इसमें संदेह नहीं कि 8वीं सदी कंबुज के उत्कर्ष का काल था, जिसमें उसकी राजशक्ति क्षीण हो गई थी।